राजा राम जी, आप शिक्षक हैं, आप शिक्षक रहते हुए आप ये बताएं कि पूर्व एक साल से जो लॉकडाउन की परिस्थिति बनी हुई है, जो हम झेल रहे हैं, उसमें बच्चों के ऊपर क्या स्थिति पैदा हो रही है, पढ़ाई लिखाई के ऊपर क्या पैदा हो रही है, कि अब उनकी क्या लगता है जीवन, जो एक साल से पूरा एकदम मतलब पढ़ाई की व्यवस्था ही गड़बड़ चल रही है, उसमें बच्चों का भविष्य का क्या होगा?
देखिए, लॉकडाउन की स्थिति जो है वो सबसे ज्यादा असर शिक्षा पर डाला है, और शिक्षा से जुड़े हुए चाहे शिक्षक हों चाहे बच्चे हों, दोनों इस मतलब महामारी की चपेट में बुरी तरह से आए हैं। शिक्षक जहां एक हद तक कहेंगे तो, अगर सरकारी शिक्षक हैं तो वो भी परेशान है, चूंकि उनका भी वेतन समय पर मिल नहीं रहा है, उनका जो इंक्रीमेंट था, उनका जो डीए था, सब कुछ सरकार ने फ्रीज कर दिया है, तो एक तरह से कहा जाए वो भी काफी परेशान हैं। बच्चे जहां जो प्राइवेट स्कूल के टीचर हैं, वो उनकी हालत तो बहुत खराब है, इसलिए कि उनकी जीविकोपार्जन का जो साधन था पिछले लगभग 1.5 वर्ष से वो बिल्कुल बंद है, पड़ा हुआ है। बीच में 2-3 महीने के लिए खुला भी था, बच्चे जो आने लगे फिर लॉकडाउन हो गया। एक तरह से कहा जाए तो वहां तो भुखमरी की समस्या आ गई है, लोग मतलब मर रहे हैं। सरकारी विद्यालय के शिक्षक कितने मरे, यूनिवर्सिटी के टीचर जो कर्मी हैं शिक्षा विभाग के, बहुत सारे लोग डेली मतलब प्रत्येक दिन मौत की सूचना आ रही है। और जो प्राइवेट स्कूल के जो टीचर हैं वो भी काल कबलित हो रहे हैं, और उस पर बच्चे हैं, उनकी पढ़ाई आपको विश्वास नहीं होगा, बहुत एक साल के बाद जब विद्यालय खुला था, बच्चे जब विद्यालय गए थे बड़ी खुशी के साथ विद्यालय गए थे, और शिक्षक भी उनको गले लगाए थे, और पढ़ाई लिखाई का सिलसिला शुरू हुआ था। आपको आश्चर्य होगा कि 5वीं कक्षा के जो बच्चे थे एक साल में ही इतना मतलब सारा चीज भूल गए थे, कि जो बच्चे पहले किताब पढ़ना जानते थे वो किताब पढ़ना भी भूल गए, जो बच्चे पहाड़ा जानते थे वो पहाड़ा भूल गए। एक तरह से बिल्कुल सिफर की स्थिति आ गई थी, और उसको किसी तरह फिर से शुरू करने की बात हुई थी। सरकारी विद्यालयों में कैचअप कोर्स का ट्रेनिंग चलवाया गया था, ताकि जो भी पढ़ाई का लॉस हुआ उसको मतलब भरपाई हो सके, वो भी नहीं हो पाया। और उसके बाद जो है बच्चे बिल्कुल किताबों से फिर दूर होते जा रहे हैं। इस परिस्थिति में मैं इतना ही कहना चाहूंगा बच्चों से कि वो किसी न किसी तरह से स्वाध्याय से जुड़े रहें। ऑनलाइन जो भी क्लासेस हैं, बहुत सारे मंच हैं ऑनलाइन क्लास के, और उन मंचों से जुड़ करके सरकार की भी, मेरा विद्यालय मेरा दूरदर्शन कार्यक्रम के माध्यम से सरकार भी प्रयास करे, तो किसी न किसी तरह से वो ऑनलाइन एक मतलब विकल्प मात्र है, जिससे जुड़ करके बच्चे कुछ भरपाई कर सकते हैं। हालांकि वो मतलब एक तरह से कहा जाए ओरिजिनल क्लास की भरपाई तो नहीं हो पाएगी, लेकिन सबसे बुरा असर बच्चों पर है। लेकिन क्या कहा जाए, ये महामारी है, और इसमें तो बच्चे का जो नुकसान हो रहा है वो उसको तो एक तरह से बच्चे जो है बिल्कुल थोड़ा सा अपने आप को सेफ रखते हुए और स्वाध्याय से जुड़ करके ही उसकी कमी को पूरा कर सकते हैं। अभिभावक उन बच्चों को जो है थोड़ा सा केयर करें, गाइड करें कि उन बच्चों को थोड़ा सा सेफ रखते हुए अगर ऑनलाइन से जो भी चीजें हैं उनको जुड़ करके कुछ मतलब पढ़ाई लिखाई।
क्या लगता है राजा राम जी, क्या लग रहा है आपको कि अगर इस कोरोना का कुछ महीने बाद अगर स्कूल खोलने पर सरकार चाहे तो क्या 1.5 साल में जो बच्चों की पढ़ाई नहीं हो पाई है उसको के पूरा कर पाएगी?
देखिए, असल है कि जो भी पढ़ाई का लॉस हो गया है उसको अक्षरशः भरपाई करना तो बड़ा मुश्किल है, लेकिन अगर प्रयास किया जाए मतलब सरकार की ओर से, शिक्षकों की ओर से, अभिभावकों की ओर से, तो कुछ हद तक उसकी भरपाई हो पाएगी। लेकिन अब बहुत लेट हो रहा है, कारण है कि जो अभी कोरोना का जो दौर चल रहा है कब तक समाप्त होगा ये कहना मुश्किल है।
सरकार को इस पे ध्यान देनी चाहिए कि क्योंकि कोई भी ऐसा दूरदर्शन के माध्यम से या जूम के माध्यम से हर एक टीचर को बच्चे से जोड़ना और उससे क्लासेज करवाना, ये भी तो एक अहम रोल है जो प्राइवेट स्कूलों में या बाकी और जगहों पे जैसे जूम के साथ मीटिंग किया जा रहा है, अगर इस तरह के क्लास शुरू किए जाए तो आपको या मुझे भी ये अंदाजा नहीं है, लेकिन हम आपसे जानेंगे कि 100 में कम से कम 50-35 बच्चे का तो रेगुलर होना उसपे जरूरी हो जाएगा, और बच्चे को कुछ कुछ समझ आ जाएगा कि नहीं हमारा ये क्लास में सब्जेक्ट था और इसमें ये चीज है, वो थोड़ा सा नॉलेज पा सकता है।
जी जी जी,
इस पे आपका क्या कहना है?
देखिए अभी जो दौर चल रहा है पूरे विश्व में, अब पारंपरिक जो विद्यालय है उस विद्यालय के जगह पर कहीं न कहीं अब सोचना पड़ेगा सरकार को भी समाज को भी कि अब वो जो पारंपरिक जो सिस्टम हमारा एजुकेशन कर रहा है उसकी जगह पर अब कहीं न कहीं जूम है या मतलब ऑनलाइन का जो भी प्लेटफॉर्म है उसके उसका एक उपयोग जरूर होना चाहिए। और जब प्राइवेट इंस्टीट्यूशन वाले लोग कर रहे हैं, अभी देखें आप लॉकडाउन की वजह से कोटा जैसे जगह पर पूरी की पूरी तरह से एक तरह से मतलब संस्थाएं तो ऑफलाइन बंद हैं लेकिन ऑनलाइन वो जारी रखे हुए हैं, ऑनलाइन बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, नीट की तैयारी, आईआईटी की तैयारी या अन्य चीजों की तैयारी चल रही है। और उसको जो है अब तो सरकारी विद्यालयों में भी उतारना ही पड़ेगा, क्योंकि अब इस भरोसे बैठना बड़ा मुश्किल है कि अब कोरोना खत्म हो जाएगा तो फिर विद्यालय खुलेंगे, अब खत्म हो जाएगा तो फिर विद्यालय खुलेंगे। इसकी जगह पर सरकार को या हम लोगों को भी एक ऑप्शन इसको लाना जरूरी हो जाएगा कि हर बच्चों को कहीं न कहीं हम इस माध्यम से भी जोड़ करके उनकी पढ़ाई, क्योंकि अब जो स्थिति आ रही है, जो रिपोर्ट आ रहा है उसमें ये कहा जा रहा है कि कोरोना बिल्कुल समाप्त होना बड़ा मुश्किल है। हाँ उसमें थोड़ी कमी हो जाएगी, थोड़ी कभी अधिकता हो जाएगी, लेकिन उसी के साथ थोड़ा सा जीना सीखना पड़ेगा। तो इस वजह से
तो इसमें एक चीज और है कि लोग ये भी रिपोर्ट सुनने में आया है कि इसके बाद अभी तो युवा वर्ग के लिए है, इसके बाद बच्चों के लिए कोरोना का त्रासदी बढ़ेगा, तो क्या सरकार को इस पे बच्चों के ऊपर इंजेक्शन की पूर्ण तैयारी करनी चाहिए या किस तरह से करना चाहिए जो हमारा भविष्य है, क्योंकि बच्चे ही हमारे भविष्य है, तो उसको किस तरह से सेफ करना चाहिए, ये कैसे सरकार को ये नीति बनानी चाहिए?
देखिए बच्चों के लिए वैक्सीनेशन भी बहुत आवश्यक है, अभी तो 18 प्लस जो वैक्सीनेशन है, पहले 45 प्लस था फिर 18 प्लस हुआ, अब बच्चों के लिए भी उसकी तैयारी सरकार हमको लगता है कर ही रही होगी या कुछ सरकार को करनी चाहिए। और बच्चे हमारे देश के भविष्य हैं, उनका सुरक्षित रहना बिल्कुल जरूरी है, त्रासदियां इसी तरह आती हैं जाती हैं लेकिन बच्चों को सुरक्षित रखना बहुत जरूरी है।
वैक्सीनेशन को लेकर के जो माहौल पैदा हुआ है कि कह रहे हैं कि लोग वैक्सीनेशन लेने के बाद भी मौत हुई है या वैक्सीनेशन गाँव के लोगों को नहीं मतलब पच रहा है, लेने के लिए जागरूक नहीं हो रहा, तो सरकार को इस पे जागरूकता फैलाने के लिए कुछ न कुछ मुहिम चलाना चाहिए।
हाँ सरकार का तो ये कर्तव्य है ही और हम सामाजिक लोगों का भी यह कर्तव्य है कि इस मुहिम को आगे तक ले जाएं, क्योंकि क्या है लोग अवेयर नहीं है, लोगों को वैक्सीनेशन के बारे में तरह तरह की भ्रांतियां हैं और वैज्ञानिकों ने बहुत सोच समझ के ही तैयार किया है, तो इसको तो निश्चित रूप से लोगों को जागरूक होने की जरूरत है, वैक्सीनेशन जरूर करवाएं। और मैं भी कहना चाहूंगा अपनी ओर से कि तमाम सुनने वालों को कि मतलब आपको राजनीतिज्ञ लोगों से हो सकता है परहेज हो जाए, किसी पार्टी से परहेज हो सकता है, लेकिन साइंटिस्ट पर विश्वास रखना जरूरी है, साइंस का जमाना है और उन्होंने तैयार किया है तो निश्चित रूप से हमारे लिए ही उपयोगी है, तो इसको जरूर लें और ये तो हमारे हित में है और सरकार को भी विभिन्न स्रोतों से इसको प्रसारित करवाना चाहिए और करवा ही रही होगी और करवा रही है, हमको लगता है कुछ और भी जरूरत है उसको भी किया जाना चाहिए।
धन्यवाद तमाम जानकारी देने के लिए राजाराम जी आपका, और हम अपने श्रोताओं से ये भी कहेंगे कि वैक्सीनेशन लेना हम लोगों के लिए बहुत ही जरूरी है, सुरक्षित रहें और परिवार को सुरक्षित रखने में आपका भी बहुत अहम योगदान होता है, इसलिए वैक्सीन लेना अति आवश्यक है। वैक्सीन के लिए किसी भी तरह की भ्रांतियां हो तो पहले सेटिस्फाइड हो लें, जानकारी ले लें, जुटा लें, अपने निजी सलाहकार जैसे डॉक्टर बगल के आस पड़ोस के जो डॉक्टर हैं आपके उनसे सलाह ले लें, बाकी और नहीं समझ में आए तो कोई अच्छे डॉक्टर से सलाह ले लें, बाकी और आपके जानने वाले हैं उनसे सलाह ले लें, लेकिन वैक्सीनेशन लेना अति आवश्यक है ताकि आप भी सुरक्षित रहें और आपके साथ साथ आपका परिवार भी सुरक्षित रहे। धन्यवाद
जी, बहुत बहुत धन्यवाद।